नमस्कार भारत, तारीख 16 जून दिन मंगलवार, मैं हूँ वंदना। जॉर्ज बुश के भाई जेब बुश अमरीकी राष्ट्रपति पद का नामांकन हासिल करने की रेस में शामिल। बुश परिवार की विरासत से कैसे निपटेंगे जेब बुश?
I love my brother. I love my dad. Actually love my mother as well. Hope that's okay.
ललित मोदी विवाद में सुषमा स्वराज पर विपक्ष के हमले तेज। और कश्मीर की खूबसूरत वादियों में फिर हो रही है फिल्मों की शूटिंग, पर क्या फिल्में दर्शा पाती हैं असली कश्मीर को?
यहाँ के राइटर्स सामने आए और वो कश्मीरियों की लाइफ के बारे में लिखें, तब आपको असली कश्मीरी लोगों की जिंदगी का पता चलेगा।
होंगी और भी खबरें, पर पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। रिपब्लिकन राजनेता जेब बुश ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए अपनी दावेदारी का औपचारिक ऐलान कर दिया है। मियामी में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की उन्होंने कहा कि वे अमरीकी समाज में सबसे निचले तबके के लोगों के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। उनके चुनाव अभियान के लोगों में पारिवारिक नाम बुश नहीं है, जिसे उनके अमरीका के राष्ट्रपति रहे अपने पिता और भाई से दूरी बनाने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। बीबीसी संवाददाताओं का कहना है कि जेब बुश को परिवार के राजनीतिक संबंधों और चंदा जुटाने की क्षमता पर निर्भर भी रहना होगा। उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों का कहना है कि उन्होंने तुर्की की सीमा से सटे रणनीतिक रूप से अहम तल अबियाद को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ा लिया है। कुर्द मिलिशिया के कमांडर हुसैन कोचर ने बीबीसी से कहा है कि इस्लामिक स्टेट के कई लड़ाके मारे गए हैं और बहुत से भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि जिहादियों ने शहर में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं, लेकिन अपने घरों के भीतर रहने वाले नागरिक सुरक्षित हैं। तल अबियाद को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाने के अभियान में फ्री सीरियन आर्मी के लड़ाके भी शामिल थे। इस्लामिक स्टेट का गढ़ रक्का तल अबियाद के रास्ते ही तुर्की से जुड़ा था, कुर्द कमांडर हुसैन कोचर ने बीबीसी को बताया। तल अबियाद शहर पूरी तरह से कुर्द लड़ाकों के कब्जे में है। हमने भीषण लड़ाई और इस्लामिक स्टेट पर चारों ओर से हमलों के बाद शहर पर नियंत्रण किया है। YPG ने शहर के अंदर अपना अभियान लगभग पूरा कर लिया है। इस्लामिक स्टेट को भारी नुकसान हुआ है और शहर के हमारे कब्जे में आने से पहले ही बहुत से लड़ाके भाग गए हैं। इटली की एक पत्रिका ने गुरुवार को जारी होने वाले पोप फ्रांसिस के जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण पर लिखे गए पत्र को लीक हुए मसौदे को प्रकाशित कर दिया है। इस पत्र में पोप ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए मानव गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराते हुए समूची मानवता से इस सदी के अंत से पहले इकोसिस्टम को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए कहा है। पोप फ्रांसिस ने प्रदूषण से निपटने के लिए एक नए संस्थान के गठन का आह्वान भी किया है। वैटिकन ने पत्र के प्रकाशन की आलोचना करते हुए कहा है कि यह मसौदे का अंतिम रूप नहीं है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष मारियो ड्रोगी ने चेतावनी दी है कि यदि ग्रीस दिवालिया होता है तो यूरोपीय संघ को अज्ञात चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ग्रीस कर्ज संकट पर वार्ता में शामिल सभी पक्षों से किसी हल तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। पश्चिमी अफ्रीका में चरमपंथी समूह बोको हराम का सामना कर रहे देशों में सिलसिलेवार आत्मघाती धमाके हुए हैं। चाड की राजधानी जमेना में दो आत्मघाती हमलों में कम से कम 23 लोग मारे गए, जबकि नाइजीरिया के भी एक उत्तर पूर्वी शहर पोटिस्कम में हुए धमाके में 8 लोग मारे गए। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में वंदना का अभिनंदन स्वीकार कीजिए। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर लाइव भी सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आज बात होगी सुषमा स्वराज को लेकर चल रहे विवाद की और भूकंप के बाद नेपाल के पुनर्वास कार्यों की, लेकिन शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव अगले साल होना है, लेकिन इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले ही डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हिलरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क में बड़ी रैली की थी और उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन हासिल करने का अभियान शुरू किया था। उनके बाद अब रिपब्लिकन पार्टी की ओर से जेब बुश ने भी एक वीडियो जारी कर अपना अभियान एक तरह से शुरू कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा, ये वही जेब बुश हैं जो पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के भाई हैं। हालांकि ये दिलचस्प है कि जेब बुश ने जो चुनावी लोगो जारी किया उस पर लिखा है जेब 2016 यानी बुश नाम नदारद है। जेब बुश ने अपने वीडियो में कहा कि एक महान देश अपनी सबसे महानतम सदी की दहलीज पर खड़ा है और वो अमेरिका का नेतृत्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जेब बुश पर सुनिए बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्ट दिलनवाज पाशा से।
वे एक राष्ट्रपति के बेटे हैं
Read my lips.
और एक राष्ट्रपति के भाई हैं।
And I read the front page, and I know the speculation.
वे दो बार फ्लोरिडा के गवर्नर रह चुके हैं और अब वो अपने लिए व्हाइट हाउस चाहते हैं। जेब बुश 6 महीने से कहते रहे थे कि वे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी की संभावनाएं तलाश रहे हैं।
I'm running for president.
मैं 2016 में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हूं।
लेकिन इसे रहस्य रखना उनके लिए भी मुश्किल हो गया था और अब उन्हें ऐलान करना ही पड़ा है। चुनाव अभियान खर्च को लेकर अमेरिका के जटिल कानूनों के कारण ही औपचारिक ऐलान में देरी हो रही थी, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक उम्मीदवारी के छदम युद्ध के दौरान ही उन्होंने $10 करोड़ का चंदा जुटा लिया है। जेब बुश को एक और बड़ा फायदा ये है कि वो स्पेनिश बोल सकते हैं और उन्होंने एक मैक्सिकन से शादी की है। अगले चुनाव में लातिनी मूल के लोगों का वोट रिपब्लिकन पार्टी के लिए बेहद अहम होगा। लेकिन नाम के साथ बुश जुड़े होने का क्या? क्या ये उनकी मदद करता है या उन्हें चोट पहुंचाता है?
I love my brother. I love my dad.
मैं अपने भाई से प्यार करता हूं, अपने पिता से प्यार करता हूं और मैं अपनी माँ से भी प्यार करता हूं। उम्मीद है ऐसा करना ठीक है।
उनके भाई जॉर्ज बुश का इतिहास उनके उम्मीदवारी हासिल करने के अभियान में अब तक का सबसे बड़ा रोड़ा साबित हुआ है। पहले जेब बुश ने भी इराक युद्ध का समर्थन किया, लेकिन बाद में कहा,
Knowing what we know now, what would you have done?
जो हम अब जानते हैं, यदि यह पहले मेरी जानकारी में होता तो मैं क्या करता? मैं इराक युद्ध में नहीं जाता।
जेब बुश भी अब रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की भीड़ में शामिल हो गए हैं। यदि वे उम्मीदवारी जीतते हैं तो उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन से हो सकता है। 25 साल पहले ये दो राजनीतिक परिवार एक दूसरे के आमने सामने आए थे और फिर से ये परंपरा आगे बढ़ सकती है।
जो जेब बुश का जो चुनावी अभियान है वो आधिकारिक तौर पे भले ही अब शुरू हुआ हो, लेकिन पिछले कई महीनों से जाहिर था कि उनकी टीम अभियान के लिए पैसा जुटाने में लगी हुई थी।
वंदना, यहाँ बताते चलें कि जेब बुश का पूरा नाम जॉन एलिस बुश है और वे पूर्व राष्ट्रपति H.W. बुश के बेटे हैं। उन्होंने 70 के दशक में वेनेजुएला में काम किया है और 1999 से लेकर 2007 तक फ्लोरिडा के गवर्नर भी रहे हैं
जी। और ये जो चुनावी रेस है इसमें रिपब्लिकन पार्टी की ओर से कई सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन ये अभी तय नहीं माना जा सकता कि जेब बुश हैं। उन्होंने एक तरह से अपनी उम्मीदवारी एक तरह से पुख्ता कर ली है। कहा जा रहा है कि जेब बुश की टीम को उम्मीद थी कि अब तक उन्होंने बाकी उम्मीदवारों से बढ़त बना ली होगी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा
जी। अपने वीडियो में जेब बुश ने भविष्य को लेकर सकारात्मक आशावादी रवैया अपनाया है और कहा है कि कुछ नेता समस्याओं की बात करते हैं, मैं समाधान की बात करता हूं।
जी, तो अमेरिका की दोनों बड़ी पार्टियों रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से धीरे धीरे अब उम्मीदवार सामने आने लगे हैं। अब जिक्र करते हैं भारत से जुड़ी खबरों का। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज दिलाने में मदद को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज विवादों में घिरी हुई हैं। विपक्ष ने उन पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज भी इस पर हंगामा जारी रहने की आशंका है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को सुषमा स्वराज को बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं ललित मोदी के वकील का कहना है कि उनके खिलाफ इंटरपोल से कोई ब्लू नोटिस जारी नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट के साथ हैं वात्सल्य राय।
ललित मोदी की मदद के मुद्दे पर जहां विपक्ष सरकार पर लगातार हमले जारी रखे हुए हैं, वहीं कल पहली बार इस मामले में ललित मोदी की ओर से सफाई पेश की गई। मोदी के वकील महमूद ए आब्दी ने सोमवार देर शाम मुंबई में कहा,
लेटर फ्रॉम इंटरपोल सेक्रेटेरिएट, दिस इज फ्रॉम इंटरपोल सेक्रेटेरिएट, आई विल रीड इट आउट फॉर योर बेनिफिट। We acknowledge the receipt of your letter dated 24th August 2013.
इंटरपोल सेक्रेटरिएट से आया पत्र मैं आपकी सुविधा के लिए पढ़ रहा हूँ। हम आपके दिनांक 24 अगस्त 2013 का पत्र मिलने की पावती देते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि इंटरपोल जनरल सेक्रेटरिएट ने आपसे संबंधित कोई ब्लू नोटिस जारी नहीं किया है। भारत से जुड़ी इंटरपोल की फाइल में आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये थे महमूद ए आब्दी के शब्द। इस बीच विपक्ष ने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री पर इस मामले में हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि ललित मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संरक्षण दे रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा,
नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट सुषमा स्वराज यू शुड ओनली रिजाइन, मिस्टर मोदी शुड सैक सुषमा स्वराज बिकॉज मिस्टर मोदी हैज सेड दैट ही इज द प्रोटेक्टर।
सुषमा स्वराज को सिर्फ इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मिस्टर मोदी को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि मिस्टर मोदी ने कहा है कि वो प्रोटेक्टर हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर से काला धन ला रहे हैं। बाहर मिस्टर ललित मोदी काला धन के प्रतीक हैं। इस सरकार में सुषमा स्वराज का कोई महत्व नहीं है। इस देश और इस सरकार को चलाने वाला सिर्फ एक शख्स है, वो नरेंद्र मोदी हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो मिस्टर ललित मोदी को संरक्षण देना बंद कर दें। ये थे राहुल गांधी के शब्द। कांग्रेस ने सरकार और वित्त मंत्रालय से ये स्पष्ट करने को भी कहा है कि उनका ललित मोदी को लेकर स्टैंड क्या है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि वो ललित मोदी को भगोड़ा मानती है या नहीं। विरोधी दल इस विवाद के जरिए भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी गतिरोधों पर भी सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास ने कहा,
इतना बड़ा निर्णय बिना पीएमओ के संज्ञान में हुआ होगा ये माना नहीं जा सकता। यदि सुषमा जी ने निजी हैसियत से लिया तो भी वो बताएं कि निजी हैसियत से लिया, अपराध उनका है, गलती उनसे हुई, हो सकती है मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन अगर इसमें कोई दूसरा व्यक्ति सम्मिलित है जिसमें सुषमा जी के कंधे का इस्तेमाल करके अपने स्कोर सेट किए जा रहे हैं भाजपा के अंतर्गत, जो कि पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, पहले दिन से जब से सरकार बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी के अंतर कलह की शिकार भारत की प्रशासनिक अवस्थाएं हो रही हैं।
बहरहाल ललित मोदी के वकील आब्दी की दलील है कि लोगों को उन सवालों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को लगता है कि ये मुद्दा सरकार को बैकफुट पर रखने के लिए खूब कारगर हो रहा है। वात्सल्य राय, बीबीसी दिल्ली।
एक और मुद्दा जिस पर हंगामा मचा हुआ है वो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को लेकर। FTII के छात्रों ने कहा है कि टीवी कलाकार गजेंद्र चौहान को संस्थान की प्रशासकीय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का वे विरोध करते रहेंगे। छात्र कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। खुद गजेंद्र चौहान का क्या कहना है इस पर बीबीसी संवाददाता वैभव दीवान ने दिल्ली में उनसे बातचीत की।
बवाल भी बिल्कुल महाभारत के जैसा नहीं, ऐसा है कि मैं इस बवाल से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी शुरू होने से पहले ही उसका विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है? ऐसे से सवालत उठ खड़े हुए हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं है, जिनका कोई स्टेटस नहीं है। बड़े दुख की बात है कि एक आदमी की काबिलियत जाने बगैर, उसकी परफॉर्मेंस जाने बगैर आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया उसके ऊपर। मेरा कहना यह है कि मेरे पास काफ़ी अनुभव है फिल्म इंडस्ट्री का, मेरे पास पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं इन दोनों चीज़ों का मिश्रण करके FTII के विषय में एक नया सपना देखता हूँ। स्टूडेंट्स की जितनी भी मांगे हैं उनको बैठ के सुना जाए, उनसे बातचीत की जाए। किसी भी विरोध का हल तभी निकल सकता है जब हम एक दूसरे को सुने।
आपने कहा कि उन मांगों को आप एड्रेस करना चाहते हैं, उनकी अभी सबसे पहली मांग जो FTII के गेट के बाहर है वो यही है, रिजाइन एंड लीव। ऐसा कड़ा रवैया बच्चों का आपके आने से पहले ही है, आपके रहते तो क्या पता वो क्लास में घुसे भी ना।
नहीं, क्या रिजाइन एंड लीव सॉल्यूशन है इसका? आपने काम देखा नहीं और उसके लिए आदेश पास कर दिया कि रिजाइन एंड लीव, ये तो कोई हल नहीं हुआ। इसके बाद क्या? फिर कोई एक नया व्यक्ति आएगा जिसको आप सरकार अपॉइंट करे, उसके बावजूद फिर क्या? फिर विरोधाभास होगा। ये क्या गारंटी है कि जो नया व्यक्ति आएगा उसका विरोधाभास नहीं होगा?
पर अगर बड़े बड़े नाम जैसा वो स्टूडेंट्स चाह रहे हैं, गुलजार साहब हैं और अपना श्याम बेनेगल साहब हैं, इनके अपॉइंटमेंट से आपके अपॉइंटमेंट को बहुत आंका जा रहा है।
क्या आने वाले समय में छात्र ये फैसला करेंगे कि उसका गुरु कौन हो, उसका टीचर कौन हो, उसे कौन रूल करे? क्या इस देश में ये नया सिस्टम आने वाला है जो ऑथराइज्ड अथॉरिटीज़ हैं जो अपॉइंटमेंट्स करती हैं उन्होंने बहुत सारा स्क्रूटनाइज करके ये फैसला लिया होगा? कहीं ना कहीं उन्होंने मुझ में काबिलियत देखी होगी। अब स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, छात्र तो बहुत सारे हैं, हर एक की अपनी एक पसंद होगी, तो क्या वो बहुत सारे चेयरमैन अपॉइंट करने पड़ेंगे? तो मेरा कहना यह है कि अगर अथॉरिटीज़ ने एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है, आप उसे काम का मौका दीजिए।
ये थे गजेंद्र चौहान, जिनकी नियुक्ति को लेकर विवाद है। वे धारावाहिक महाभारत में युधिष्ठिर का रोल किया करते थे। बात जब टीवी और फिल्मों की हो रही है तो इसी से जुड़ी एक और खबर। 50, 70, 60 के दशक में कितनी ही हिंदी फिल्मों में आपने कश्मीर की खूबसूरती को फिल्मी पर्दे पर जरूर देखा होगा।
कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर।
जी हाँ, कश्मीर। कश्मीर की कली, जंगली, जब जब फूल खिले, सिलसिला, कभी कभी, आरजू, हैदर, हाईवे, भाग मिल्खा भाग, इतनी सारी फिल्में हैं हॉलीवुड की जिनकी शूटिंग कश्मीर की सुंदर वादियों में हुई है। लेकिन 90 के दशक में दहशतगर्दी का साया वादी पर पड़ा तो शूटिंग भी बंद हो गई। कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सामान्य हुए हैं। बॉलीवुड के सितारे और निर्माता दोबारा घाटी में फिल्मों की शूटिंग करने लगे हैं, लेकिन साथ ही 25 साल से बंद पड़े सिनेमा घरों को दोबारा खोलने पर भी बहस छिड़ी हुई है, और ये भी कि इन फिल्मों में कश्मीर को किस तरह से दिखाया जाता है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
कश्मीर के खूबसूरत लोकेशंस पर भारतीय फिल्मों की शूटिंग तो एक पुरानी रीत है, लेकिन आजकल फिल्म सितारे खुद यहां आकर अपनी फिल्मों को प्रमोट करते हैं। वाशु बगनानी की नई फिल्म वेलकम टू कराची का प्रमोशन भी पिछले दिनों यहीं से हुआ। अर्चित वारसी के साथ इस फिल्म में वाशु बगनानी के बेटे जैकी बगनानी ने अहम भूमिका निभाई है। इनका कहना है कि कश्मीरी लोग भी बॉलीवुड का हिस्सा बन सकते हैं।
कभी कभार ऐसा होता है कि आप यू नो टीवी पे कभी कुछ देखते हैं और असलियत से वो बहुत दूर होता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल कुछ मुझे कुछ प्रॉब्लम नजर ही नहीं आ रही।
गौरतलब है, मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार बनते ही मुंबई रवाना हुए और वहां सभी फिल्म निर्माताओं और एक्टर्स को कश्मीर आने का निमंत्रण दिया। इसके बाद सलमान खान और कई बड़े अदाकारों ने यहां फिल्मों की शूटिंग की। सलमान की नई फिल्म बजरंगी भाईजान की ज्यादातर शूटिंग घाटी में ही हुई है। फिल्म निर्माता यहाँ के मनमोहक नजारों को कैमरे में कैद तो करते हैं, लेकिन 25 साल से बंद पड़े सिनेमा घरों पर इन्हें हैरत है। आम लोग तो अभी सिनेमा घरों को दोबारा चालू करने के हक में नहीं है,
क्योंकि यहाँ लाखों लोग मर गए, लाखों लोग शहीद हो गए हैं। यहाँ तो हर वक्त जुल्म सितम भी होता है, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ सिनेमा चालू हो।
लेकिन कुछ वर्गों का कहना है कि फिल्म टूरिज्म की वजह से यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कई फिल्मों के लिए लाइन प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके खावर जमशीद कहते हैं,
दूसरा फिल्म मेकिंग का ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। इन द सेंस, अभी देखिए, अगर 100 पीपल का क्रू बॉम्बे से आता है तो उसमें से यहाँ जो मेजर HODs होते हैं, जैसे कैमरामैन होते हैं, उनका स्टाफ होता है, जैसे जिमी जिपिक इक्विपमेंट है लॉन्ग आर्म का, तो उसके साथ 10 बंदे होते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ 10-10, 20-20 बंदे होते हैं, लाइटिंग है ऐसी चीज़। तो अगर हमारे पास अपना ही ये होगा तो 100 लोगों की जगह शायद बॉम्बे से 20 ही लोग आएंगे, वो 80 लोग भी कश्मीर में ही एम्प्लॉयड हो जाएंगे।
फिल्मों की शूटिंग हो या इनका प्रमोशन, यहाँ की जनता में अब ये बहस छिड़ गई है कि बॉलीवुड कश्मीर की सुंदरता को तो फिल्मा रहा है, लेकिन कश्मीर की असली कहानी नहीं सुना रहा। ये शिकायत हल्की सी उस वक्त कम हुई जब विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर रिलीज हुई। इसमें कश्मीरियों के अंदरूनी हालात का साफ साफ इशारा था।
मिलकर खेला हमसे बॉर्डर।
लेकिन एक्टर और राइटर देवती नवल ने BBC के साथ खास बातचीत में कहा कि जब तक कहानियां कश्मीर के अंदर से न लिखी जाएं, ये शिकायत खत्म नहीं होगी।
लेकिन पहले जितनी भी फिल्में बनी वो बाहर से लोग आए और यहाँ रोमांस करके वापस चले गए। जो कश्मीरी का जो रोल था वो शिकारे वाले का था। तो अगर कोई फिल्म यहाँ की बने, यहाँ के राइटर्स सामने आए और वो यहाँ के कश्मीरियों की लाइफ के बारे में लिखें और वो स्क्रीन प्लेज वर्कआउट हों और कश्मीरी लोगों के लाइफ से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हों, तब आपको असली कश्मीरी लोगों की जिंदगी का पता चलेगा।
गौरतलब है, बॉलीवुड को कश्मीर की तरफ से आकर्षक करने के लिए यहाँ की सरकारें कई वर्षों से एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। यहाँ 25 साल से सिनेमा घर बंद हैं और अलगाववादियों ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि वो सिनेमा को दोबारा चालू करने का विरोध करेंगे। लेकिन इंटरनेट और TV पर यहाँ के युवक भारत और पाकिस्तान के साथ साथ ईरान, तुर्की, पूर्वी यूरोप और अमेरिका की फिल्में शौक से देखते हैं। बॉलीवुड की ऐसी फिल्में भी बहुत ज्यादा चलती हैं जिनमें कश्मीर के हालात की सही तस्वीर होती है।
तो कश्मीर की खूबसूरती फिर से खींच रही है फिल्म मेकर्स को, लेकिन कश्मीरियों की अपनी शिकायतें भी हैं। ये थी रियाज मसरूर की रिपोर्ट। अब खबर भारत के पड़ोसी देश नेपाल से। वहां भूकंप के बाद अब ऐतिहासिक इमारतों को संभालने की कवायद शुरू कर दी गई है। ऐसा करने के पीछे मकसद ये है कि नेपाल को सामान्य स्थिति की ओर लौटता हुआ दिखाया जा सके, पर्यटन स्थलों को जैसे तैसे दोबारा खड़ा किया जा रहा है। काठमांडू से बीबीसी संवाददाता गनी अंसारी की रिपोर्ट।
नेपाल के पर्यटन अधिकारियों ने भूकंप की त्रासदी के करीब 2 महीने बाद विदेशी पर्यटकों को प्राचीन मंदिरें और ऐतिहासिक इमारतें देखने के लिए नेपाल आने की अपील की है। राजधानी काठमांडू से जुड़े भक्तपुर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के जरिए नेपाल के पर्यटन मंत्री कृपा सुर शेर्पा ने प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों को पर्यटकों के लिए खोले जाने का घोषणा की। नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के महानिदेशक भेष नारायण दाहाल ने कहा,
आजको तपाईलाई मेसेज चाहिँ के हो भने अब हामी नर्मल लाइफमा फर्किसक्यौँ है, बाहिर मीडियाले भन्ने जस्तो असुरक्षित छैन है भन्ने एक किसिमको एउटा सांकेतिक सन्देश दिने।
आज के कार्यक्रम का मकसद ये बताना है कि अब हम सामान्य जीवन बिताने लगे हैं। विदेशी मीडिया में जैसा कहा जा रहा है उस तरह की स्थिति अब नहीं रही, यही संदेश पहुँचाने की कोशिश के तहत ये कार्यक्रम किया गया है।
25 अप्रैल को आए भूकंप की वजह से काठमांडू वादी में स्थित प्राचीन मंदिरों और इमारतों का दर्शन बंद किया गया था। काठमांडू की वादी से 3 प्राचीन दरबार, 2 हिंदू मंदिर और 2 बौद्ध स्तूप यूनेस्को की विश्व संपदा सूची में शामिल हैं, जिनमें काठमांडू का दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर और भक्तपुर दरबार स्क्वायर शामिल हैं। इसी तरह चांगू नारायण और पशुपतिनाथ मंदिर एवं बौद्ध स्तूप और शंभुनाथ स्तूप विश्व संपदा सूची में मौजूद हैं। 7 प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक इमारतों में से सिर्फ चांगू नारायण मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पर्यटन मंत्री शेर्पा ने कहा,
अब यह भौतिक पूर्वाधार पुराने शैली में निर्माण करने कुरा में न्यूनतम 2 वर्ष देखि 5 वर्ष में लगने अहिले आकलन गरिएको छ।
प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों के पुनर्निर्माण में 2 से 5 साल का वक्त लग सकता है और इसके लिए 10 से 12 अरब रुपयों की जरूरत पड़ सकती है।
लेकिन जिन प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों के अवलोकन की इजाजत दी गई है उनमें भी कुछ जगह जाने से रोका गया है। टूटी इमारतों के ईंटों को सजा कर रखा गया है। इसी तरह उन प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों की भूकंप से पहले की तस्वीरें रखी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के मुताबिक भूकंप की वजह से छोटी बड़ी कुल मिलाकर तकरीबन 200 मंदिरें, स्तूप और धर्मशाला क्षतिग्रस्त हैं। गनी अंसारी, बीबीसी, काठमांडू।
तो पटरी पर लौटने की कोशिश में है नेपाल, हालांकि तबाही इतनी हुई है कि उसमें काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। और अब नज़र दौड़ा लेते हैं आज के अखबारों पर दिलनवाज पाशा के साथ।
जी, आज के अखबारों में भी सुषमा स्वराज को और ललित मोदी का जो उन्होंने वीज़ा की मदद की थी उनका, उसमें वो ये खबर छाई हुई है। दैनिक जागरण लिखता है, खेल तो अब शुरू हुआ है। बाकी अखबारों ने राहुल गांधी के उस बयान को तरजीह दी है जिसमें उन्होंने दोनों मोदी को, जो ललित मोदी को नरेंद्र मोदी से जोड़ते हुए
इस्तीफा कार्यक्रम में भी हमने उनकी वो चलाई थी।
जी बिल्कुल। एक और बड़ी खबर कल आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट परीक्षा रद्द करके इसे 4 सप्ताह के भीतर करने के लिए कहा है। नई दुनिया का शीर्षक है, फिर होगी AIPMT।
और बच्चों के लिए काफी उलझन वाली बात है क्योंकि एक बार परीक्षा दी है और अब फिर 4 हफ्ते में फिर से तैयारी करेंगे।
जी बिल्कुल। और द हिंदू की एक खबर के मुताबिक दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मपाल को अपने दफ्तर की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस को बुलाना पड़ा है। ये विवाद अभी थमने का नाम नहीं। जी बिल्कुल। और द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में किराए का मकान के लिए जो लोग किराए के मकान मांगते हैं उनमें दलितों और मुस्लिमों को भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। इस विशेष रिपोर्ट के मुताबिक फ़ोन पे जब मकान मांगा जाता है तो 18% दलितों को मना कर दिया जाता है और 31% मुसलमानों को मुसलमान बताने पर मना कर दिया जाता है, जबकि यदि आप ब्राह्मण या अपर कास्ट हिंदू हैं तो ऐसा नहीं होता।
यानी इसमें जो जात पात धर्म है वो इसमें भी प्रवेश कर गया है।
जी बिल्कुल। और नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट, एक विशेष खबर तो नहीं है, सब अखबारों ने छापा है, कल केजरीवाल और राजनाथ सिंह ने मुलाकात की थी जो बेनतीजा रही। ये बाकी अखबारों में भी खबर है। दैनिक भास्कर की एक विशेष खबर ध्यान खींच रही है, ये एक पायलट के बारे में है जो 4 साल पहले ऑटो चलाते थे। ये नागपुर के श्रीकांत पंतवणे हैं, शीर्षक दिया गया है। 4 साल पहले ऑटो चलाते थे, अब प्लेन उड़ाते हैं।
काफ़ी लंबी उड़ान भरी है इन्होंने।
जी। और जनसत्ता में आप 21 जून को योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाएगा, स्कूलों यूनिवर्सिटियों से मनाने के लिए कहा गया है, लेकिन जनसत्ता लिखता है योग के लिए बच्चों की छुट्टियां खराब नहीं करेगी पंजाब सरकार।
जी, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं।
गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। और एक कार्टून भी जनसत्ता में कोने में छपा है।
जी, ये कार्टून बहुत दिनों बाद हमारी समीक्षा में आया है।
मोदी मोदी करते हुए एक आदमी चिल्ला के जा रहा है और पीछे से कोई कह रहा है इसमें जो पहले वाले मोदी हैं वो नरेंद्र मोदी हैं और जो दूसरे मोदी हैं वो ललित मोदी हैं।
जी,
और अखबारों में मानसून अपडेट भी आने लगा है।
आने लगा क्योंकि
आज दैनिक जागरण में कॉर्नर में मानसून अपडेट
कहाँ तक पहुंचा है ये बताया जा रहा है।
जी, और बाकी कल से दो तीन दिन से हम देख ही रहे हैं दिल्ली का मौसम तो बेहतर है ही।
जी, यहाँ लेकिन अभी इंतजार है, जो मानसून है उसने उस तरह से दस्तक अभी नहीं दी है।
जी
जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों पर नज़र डालने के लिए और खासकर कार्टून भी दिखाने के लिए। और अब बारी हो चुकी है खेल की खबरों की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत और बांग्लादेश के बीच फतुल्ला में खेला गया एक मात्र टेस्ट मैच बारिश के कारण ड्रॉ रहा, लेकिन इसके बावजूद दोनों टीमों को कम से कम इस बात का तो इत्मीनान रहा कि कम से कम उन्हें एक एक पारी तो खेलने को मिली। मैच समाप्त होने के बाद पत्रकारों के जवाब देते हुए विराट कोहली ने अपनी कप्तानी की खासियत का जिक्र किया। वैसे उन्होंने इस बात पर जोरदार चुटकी ली जब उनसे पूछा गया कि मैच से पहले बांग्लादेश लगातार कह रहा था कि पाकिस्तान के बाद अब हम भारत को कड़ी चुनौती देंगे।
सर, एड कैंपेन है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला, हम इस तरीके की क्रिकेट खेलना चाहते हैं और एडिलेड में जब मैंने पहला टेस्ट मैच में कैप्टनसी करी थी तो मेरा यही सोचना तब भी था कि हम अग्रेसिव खेलें और अपने आप को चांस दें गेम जीतने का, और मज़ा उसी तरह क्रिकेट खेलने में आता है। मुझे लगता है एज ए टीम स्पेशली जब हम फील्डिंग करते हैं तो वो इंटेंसिटी और वो एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ही टाइम है जब 11 लोग एक साथ फील्ड में होते हैं, तो वो टीम का मतलब असली जो है वो उस टाइम समझ आता है और उस टाइम फील होता है पूरी यूनिट में। तो वो एक हमारी एक टीम में हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि इंटेंसिटी फील्ड में हमेशा यू नो मेंटेन रहनी चाहिए।
अब अगर क्रिकेट में खिलाड़ियों की रैंकिंग की बात की जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक मात्र टेस्ट मैच के ड्रॉ रहने के बाद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में मुरली विजय 20वें और शिखर धवन 45वें पायदान पर पहुंच गए हैं। धवन को एक साथ 15 स्थान का फायदा हुआ। अजिंक्य रहाणे 22वें और विराट कोहली 11वें पायदान पर हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के आर अश्विन 12वें पायदान पर हैं। उधर गत चैंपियन जर्मनी, अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स ने विश्व लीग सेमीफाइनल में पहले तीन स्थानों पर रहते हुए अगले साल होने वाले रियो ओलंपिक के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। जर्मनी ने फाइनल में मेजबान अर्जेंटीना को 4-1 से हराया, वहीं नीदरलैंड्स ने कनाडा को 6-0 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। उधर टेनिस के कोर्ट पर भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा WTA युगल रैंकिंग में शीर्ष पर बनी हुई हैं, जबकि उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस दूसरे स्थान पर हैं। महिला एकल वर्ग में फ्रेंच ओपन के रूप में अपने टेनिस करियर का 20वां खिताब जीतने वाली अमेरिका की सेरेना विलियम्स पहले पायदान पर हैं, जबकि रूस की मारिया शारापोवा 2 स्थान के नुकसान के साथ चौथे पायदान पर पहुंच गई हैं। पुरुष एकल वर्ग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले स्थान पर बने हुए हैं। स्टुटगार्ट ओपन में पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीतने वाले भारत के रोहन बोपन्ना युगल ATP रैंकिंग में 18वें पायदान पर बने हुए हैं।
तो खेल की दुनिया का लेखा जोखा लेकर आए थे आदेश कुमार गुप्त। और अब इससे पहले कि कार्यक्रम को समाप्त करें, सुन लेते हैं विश्व समाचार दिलनवाज पाशा से।
अमेरिका में रिपब्लिकन राजनेता जे बुश ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए अपनी दावेदारी का औपचारिक ऐलान कर दिया है। उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों का कहना है कि उन्होंने तुर्की की सीमा से सटे रणनीतिक रूप से अहम तल अबियाद को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ा लिया है। इटली की एक पत्रिका ने गुरुवार को जारी होने वाले पोप फ्रांसिस के जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण पर लिखे गए पत्र के लीक हुए मसौदे को प्रकाशित कर दिया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष मारियो ड्रॉगी ने चेतावनी दी है कि यदि ग्रीस दिवालिया होता है तो यूरोपीय संघ को अज्ञात चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पश्चिमी अफ्रीका में चरमपंथी समूह बोको हराम का सामना कर रहे चाड और नाइजीरिया में सिलसिलेवार आत्मघाती धमाके हुए हैं। दक्षिण कोरिया का कहना है कि देश में मर्स संक्रमण से 3 और लोगों की मौत हो गई है और इस वायरस से मरने वालों की कुल तादाद अब 19 हो गई है। BBC समाचार।
तो इसके साथ ही नमस्कार भारत में विदा लेने का समय आ चुका है। आज स्टूडियो संभालने का काम किया था अजीत सारथी ने। अगली मुलाकात आपसे होगी अब से ठीक 1 घंटे बाद। तब तक के लिए वंदना को दीजिए अनुमति।